स्पंदन अनक बार सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हथ ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना सार न जाना तेरी सबते वड़ा सतगुर नानक जिन कल राखे मेरी बेसुमार अथाह अगनत अतोले ज्यों बुलाओ त्यों नानक दास बोले। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी में उपस्थित गुरु की साजी निवाजी सात संगत जी, गज के आखो वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज की विशेष अनुकंपा है हम लोगों के ऊपर कि उन्होंने जीवन का रहस्य जो परम सुख है, परम आनंद है, वाहे गुरु है, उसको अनुभव प्राप्त करने के लिए, अंदर दर्शन करने के लिए हमें सुखमणि प्रदान किए हैं। सुखमणि अर्थात परम सुख, परम सुख अर्थात परमात्मा। साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज परम सुख प्राप्त करने के लिए अनेक अनेक तरह के उपदेश, अनेक अनेक तरह की युक्तियां साहेब श्री गुरु ग्रंथ साहेब में प्रदान किए हैं। साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज सुखमणि के माध्यम से उपदेश कर रहे हैं अपने जन का पर्दा ढाके अपने सेवक की सर पर राखे। जो व्यक्ति गुरु का हो जाता है, जो व्यक्ति परमात्मा का हो जाता है, उसको परमात्मा उसके पर्दे को ढकता है और उसको अपने सिर पर रख लेता है परमात्मा। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं योग क्षेम वहाम्य हम। जो व्यक्ति वाहिगुरु का हो जाता है, परमात्मा का हो जाता है, उसका हमेशा प्रतपाल करता हूँ, पालना करता हूँ, देखभाल करता हूँ, अपने जन का पर्दा ढाके अपने सेवक की सर पर राखे, अपने दास को देव वडाई, अपने सेवक को नाम जपाई। साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज उपदेश कर रहे हैं कि वाहिगुरु परमपिता परमात्मा अपने दास को, जो व्यक्ति सब कुछ को छोड़कर एक प्रभु के आश्रित, एक वाहिगुरु के आश्रित हो गया है, ऐसा जो दास है परमात्मा उसको इस संसार में जस दिलाता है, वडाई दिलाता है, अपने सेवक को नाम जपाई। और जो प्रभु का सेवक होता है उससे परमात्मा नाम जप सुमिरन करवाता है, क्योंकि कलयुग में जो है सो सुमिरन की विशेष महानता है। अब कलु आयोरे एक नाम वो, कलयुग में नाम की बड़ी महानता है। प्रभु परमात्मा सेवकों को किस प्रकार रखता है इसके बारे में एक बहुत ही सुंदर कहानी है कि एक चक्रवर्ती सम्राट था, एक राजा था बहुत बड़ा, उसका चारों तरफ राज था और राजा धर्मात्मा भी था। लेकिन उसका कोई पुत्र नहीं था। कोई पुत्र न होने के कारण राजा बहुत चिंतित रहता था, हमेशा चिंता चिंता ही चिंता। कितने संतों के पास गया, फकीरों के पास गया, महापुरुषों के पास गया, लेकिन फिर भी उसको कोई उपाय नहीं बना। तो एक संत थे, उनके चरणों में जाके काफ़ी सेवा किया राजा। वो जो संत था साथ में ज्योतिषी भी था। उसने उसके भविष्य को देख करके कहता है कि राजन, तुम्हारा पुत्र हो सकता है, लेकिन इसके लिए कोई ऐसा ढूंढो बच्चे को जो अपनी बलिदानी दे सके। तुम ऐसा करो, इस जंगल में एक देवी का स्थान है, वहाँ पर किसी बच्चे को बलि दो, उसके बलि के प्रताप से तुम्हारे घर में बच्चा पैदा हो। राजा ने कहा कि कोई नहीं, हमारे खजाने में इतना दौलत है, हम किसी को भी खरीद सकते हैं। बहुत से लोगों को फांसी की सजा होती है, तो मैं इसी बहाने फांसी की सजा भी हो जाएगी, बलि भी हो जाएगा। वो संत कहता है नहीं, कोई ऐसा बच्चा हो जो खुशी से बलिदानी दे तेरे लिए, तब जाकर के उस बलिदानी से तुम्हारा लड़का हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। वहाँ पर जिस सारे सभा में सारे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया, पैसे के लिए कोई अपना पुत्र देना नहीं चाहता। कौन माँ चाहेगी कि मैं ठीकरे के लिए अपने पुत्र को बलिदानी दे दें। लेकिन एक घर में सात पुत्र था और अत की गरीबी थी, बहुत गरीबी, बहुत परिश्रम करना फिर भी मुश्किल से रोटी चलना। जो उसका एक छोटा लड़का था, वो हमेशा साधु संतों के पास ही जाया करता था, सुबह से शाम तक संतों की सेवा करना वहीं बैठा रहता, और घर में उसको लोग निकम्मा कहते थे। आपके घर में कोई लड़का संतों से ज़्यादा प्रेम करने लग जाए, गुरुद्वारे ज़्यादा आने लग जाए, तो ये सोचते हो कि मेरे हाथ से निकल गया है। लेकिन झूठ सच इधर उधर करके बहुत धन लाने लग जाए, तब तुम उसको समझते हो ये लड़का मेरा बहुत लायक है, बहुत लायक। देखो इतना तनख्वाह, इतना पैसा लाता है। लेकिन साध संगत जी, परमात्मा के दरगाह में वही सच्चा है जो महापुरुषों संतों को जाके सेवा करता है, गुरु स्थानों में जाके सेवा करता है, वाणी पढ़ता है, जो गुरु वाला हो जाता है, वास्तविक में सच्चा वो है। जो छोटा लड़का था जो संतों के पास जाकर के बैठा रहता था, उसकी आज्ञा पालन करता था, उसकी माँ और उसका पिता सोचता है कि क्यों ना हो, हमारे घर में बहुत गरीबी है, राजा को कुछ पैसा लेकर के यही निकम्मा पुत्र को दे रहे। ऐसा ही किया, राजा ने उसको काफ़ी पैसा धन दिया और उस पुत्र को लेकर के उसको देवी के आगे बलि देने के लिए ले गया जंगल में। बलि देने से पहले उससे इच्छा पूछता है राजा कि अंतिम तेरी इच्छा क्या है। वो लड़का कहता है, हमारी अंतिम इच्छा ये है कि मैं पहले नदी स्नान करूं। नदी ठीक है जी, नदी स्नान कर लो। नदी स्नान करके उसने वाहेगुरु का सुमरण किया, वाहेगुरु का सुमरण करके रेते का चार ढेरी बनाया, बड़ा बड़ा ढेर बना दिया रेते का, और एक ढेर को देखता है गौर से, फिर उसको जो है उस ढेर को हटा देता है, फिर दूसरे ढेर को भी देखता है, दूसरे ढेर को भी हटा देता है, प्लेन कर देता है, तीसरे ढेर को देखता है, तीसरे को भी प्लेन कर देता है। चौथा जो ढेर था रीता का, उसका वो परिक्रमा करता है, चारों तरफ घूमता है और घूम करके नमस्कार करके वहाँ पर मत्था टेक करके आ गया। राजा ये सारी घटना को देख रहा था। राजा पूछता है कि तुम्हारी बलि तो होनी ही है, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा कि तुमने नदी स्नान करने के बाद तुमने पाठ किया, पाठ करने के बाद रेते का चार ढेरी बनाया और चार ढेरी बना करके तीन को ढा दिया, एक को परिक्रमा किया, पूजा किया, फिर आ गया मेरे पास। कहते हैं राजन, इसमें रहस्य इतना ही है कि चार ढेरी बनाया था, एक बनाया था माता पिता के लिए। मैं गौर से देख रहा था कि शायद मेरी माता पिता रक्षा करेंगे मुझको, लेकिन मन में सोचा कि माता पिता ने ही तो धन के लालच में मुझे बेच दिए, इसलिए इसकी आशा नहीं करना है। उस ढेरी को हमने ढा दिया। दूसरा ढेरी बनाया था बादशाह के लिए कि बादशाह ईश्वर का स्वरूप होता है, प्रजा का रक्षक होता है, लेकिन मैं क्या देखता हूँ कि प्रजा जो है, राजा अपने सुख के लिए मुझको बलि दे रहा है, तो ये राजा परोपकारी कहाँ से हो सकता है। हमने दूसरा ढेरी भी ढा दिया। तीसरा ढेरी बनाया था देवताओं के लिए कि देवता हमारे मदद करेंगे, लेकिन जो देवता हमारी बलि के लिए भूखा है, मैं उस देवता को क्या करूँगा, उसका आशा क्या करना है। उस ढेरी को, जो रेती का ढेर था, उसको भी मैंने ढा दिया। कहते फिर चौथा ढेरी को तुमने पूजा किया, परिक्रमा की। कहते चौथा ढेरी जो है एक निरंकार वाहेगुरु का बनाया। मैंने ये सोचा कि अब जो है सगल द्वार को छाड़ के गई हो तुहारो द्वार। मैंने एक ढेरी को रहने दिया, उसका परिक्रमा किया और मैंने सोचा कि एक निरंकार जो वाहेगुरु सच्चा पातशाह है, वही हमारी रक्षा करेंगे, और कोई रक्षा नहीं कर सकता। इसीलिए मैं उसका परिक्रमा किया, पूजा किया, फिर आ गया तुम्हारे पास। राजा ने उसकी कुशलता को देख करके, उसकी भावना को देख करके और उसकी बुद्धिमत्ता को देख करके इतना प्रभावित हुआ कि कहता है राजा कि मैं तुमको बलि नहीं दूंगा, तुम मेरे साथ चलो। उसको जी बहुत प्रेम से अपने राज दरबार में ले गया, सारे मंत्रियों को बुलाया, सारे मंत्रियों से कहता है कि मैं यदि इसका बलि दे देता हूँ और फिर भी पुत्र नहीं होता तो मैं क्या करूँगा, लेकिन क्यों ना हो कि ऐसा पुत्र, इसी को मैं पुत्र बना लेता हूँ धर्म का, और ऐसा कुशल, ऐसा धर्मात्मा और कौन मिलेगा। सारे मंत्रियों को बुला करके, पंडित को बुला करके वहाँ पर हवन वगैरह किया और उसको धर्म का पुत्र बना दिया। धर्म का पुत्र बना करके उसको राजकुमार देकर बना करके राजगद्दी दे दी। इसलिए साध संगत जी, जो व्यक्ति एक निरंकार, एक वाहेगुरु का हो जाता है, परमात्मा उसको विपत्ति में रक्षा करते हैं। प्रह्लाद को वाहेगुरु, पहाड़ से उसे फेंका गया, प्रभु ने रक्षा की। उसको नदी में डाला गया, प्रभु ने रक्षा की। अग्नि में डाला गया, रक्षा की। जब तुम उसका हो जाओगे, एक निरंकार का, प्रभु तुमको हर एक जगह फूलों की तरह अपने हृदय में लगाएगा, रक्षा करेगा। लेकिन जब संसार का हो जाओगे तो कदम कदम की ठोकरें खाओगे, दुख मिलेगा, क्लेश मिलेगा। दो ही चीज है, एक एब्सोल्यूट ट्रुथ और दूसरा अपीयरेंस। एब्सोल्यूट ट्रुथ सत्य है, परमात्मा है, वाहेगुरु है, निरंकार है, और अपीयरेंस जगत है। जगत का आशा रखने पर दुख, क्लेश, क्षण क्षण में जो है विपत्ति, लेकिन वाहेगुरु का आशा रखने पर वाहेगुरु तो तुमको वहाँ पहुँचा देंगे जहाँ पहुँचने के बाद और कहीं पहुँचने की जरूरत नहीं होती, वाहेगुरु अपने साथ तुमको मिला देंगे। इसलिए गुरु महाराज साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज उपदेश कर रहे हैं, अपने जन का पर्दा ढाके अपने सेवक के सर पर रखे। वाहेगुरु जो है अपने सेवक को, लेकिन सेवक बन जाए एक बार, फिर जो है सो अपने दास को दे बढ़ाई, अपने सेवक को नाम जपाई। वाहेगुरु अपने सेवक से नाम सुमरण करा करके उसको परम गति देता है। अपने सेवक की आँख पत राखे ताकि गतमित कोई न लाखे, अपने सेवक की आँख पत राखे। साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज उपदेश कर रहे हैं कि अपने सेवक की आप पत राख। परमात्मा वाहेगुरु अपने सेवक की इज्जत रखता है, उसको बहुत शिखर पर ले जाता है। नीच जात हर जपत्या उत्तम पदवी, उत्तम पदवी को प्राप्त होता है ताकि गतमित कोई न लाख है। उसकी जो गतमित, उसका रहस्य, जो प्रभु का सेवक है वो कितनी ऊंचाई पर पहुंच सकता है कोई कह नहीं सकता। एक समय की बात है कि कबीर जी हमेशा सत्संग सुमरण पाठ, लोगों का भला करने, भक्तों के भी दुश्मन हो जाते हैं, ऐसा नहीं कि आम लोगों के दुश्मन। जब तुम प्रभु के मार्ग पर चलोगे, सच्चाई के मार्ग पर चलोगे, तो भी लोग दुश्मन बन जाते हैं। लोगों ने सोचा कि कबीर जी का बहुत जस हो रहा है, कोई ना कोई इनकी बदनामी का प्लानिंग सोचे। और मैं देखता हूँ, जगत में भी देखता हूँ, रोज देखता हूँ मैं, कि जो नाम सुनने वाले, जो हरेक का भला सोचता है, उसके लिए भी लोग खोजते रहते हैं कि कोई खोट मिल जावे ताकि मैं उसको बड़ा करके बताऊं, ताकि उसका पतन। कबीर जी सुमरण करते हैं 24 घंटा, उनका जस फैल रहा है। एक समय की बात है, एक साधुओं का टोला बहुत बड़ा, 500 साधुओं का टोला कहीं जा रहा था। वो सारे साधुओं को, उन लोगों ने जो निंदक लोग थे, सारे ने साधुओं को बोले आपको पता है? कहते नहीं जी हमको पता तो नहीं। कबीर जी ने बहुत बड़ा भंडारा कर रहे हैं, वहाँ पर जो है दक्षिणा भी मिलेगा, रोटी मिलेगा, कपड़ा मिलेगा, सर्दी का मौसम है, कंबल भी मिलेगा। कहते हैं अच्छा। उन लोग जी 8-10 किलोमीटर दूर थे, पैदल आ रहे थे बेचारे, चलते चलते कबीर का पूछ एड्रेस पूछ पूछ के कबीर के पास पहुंच गए। कबीर ने देखा कि हजारों साधु जो है सो 500-700 साधु आ गए हैं, और इसका भोजन वगैरह का क्या व्यवस्था होगा। कबीर जी जो है एक झाड़ी में जा करके वाहेगुरु का सुमरण करने लग पड़े, दूर जा करके। वाहेगुरु तुसी जानो तो अड़ा काम जाने, ये तो मेरे बस की बात। कबीर जी जा करके जी सुमरण कर रहे हैं, वहाँ पर वाहेगुरु परमात्मा कबीर का रूप धारण करके घर में आ गए, और इतना फर्स्ट क्लास 36 प्रकार का भोजन, इतनी खुशबू आ रहा है भोजन में, साथ में मालपूड़े खीर और सोने की थाली में सब संतों को भोजन, सारे संतों को भोजन दे रहे हैं, दिए जा। सारे संत कह रहे हैं कि ऐसा हमने जिंदगी में भोजन स्वादिष्ट नहीं खाया। भोजन करने के बाद कहते हैं सारे संत लोग के भाई भांडे कहाँ रखे? कहते भांडे कहाँ क्या रखे, धो करके ले जाओ, ये तो तुम्हारी गरीबी मिट जाएगी, एक थाली भेज दोगे आश्रम बन जाएगा तुम्हारा, मौज लो जा। सारे लोगों ने जी फटाफट धोया, अपने झोली में रखा और वहाँ से जा रहे हैं। लेकिन धन कबीर कहते जा रहे हैं। उधर से झाड़ी से एक निकले कबीर जी, वो भी साधु के बेस में थे। कहते हैं कि तुम यहाँ पर झाड़ी में बैठ करके भूख मर रहे हो, अरे तेरी गरीबी मिट जाएगी, जाओ कबीर के घर जो है वहाँ पर तो लंगर लगा हुआ है, खीर पूड़ी और मालपुए तरह तरह के पदार्थ हैं, और इतना ही नहीं सोने की थाली में चम्मच भी गिलास भी सोने का, और यहाँ तक कि कह दिए कि धो करके ले भी जाओ, जाओ जाओ जल्दी जो है तुम यहाँ झाड़े में बैठ के क्या कर रहे हो। कहते अच्छा मैं जाता हूँ। वहाँ पर जी जाके देखते हैं प्रभु की लीला को, वो कबीर रो गया प्रेम के आंसू से, हे नारायण मेरी पत रखने के लिए तुमने इतना बड़ा कष्ट उठाया। उस दिन से तो कबीर की भक्ति जो है 100 गुना ज्यादा हो गई, हे नारायण हाजर नाजर तू ही है मेरे लिए और कोई नहीं। इसलिए सास संग जी जो व्यक्ति उसका हो जाता है ना एक बार निरंकार का, तो वाहेगुरु उसको अपने हृदय में रखते हैं और उसका काम करते हैं। अपने सेवक की आप पत राख है ताकि गतमित कोई न लाख है, प्रभु के सेवक को न पहुँचे प्रभु के सेवक ऊँचते ऊँचते। वह जो प्रभु का सेवक जो बन जाता है, प्रभु का सेवक कौन है जो उसका सुमरण करता है और उसकी आज्ञा का पालन करता है, सत्य के मार्ग पर चलता है। सत्य के मार्ग पर चलने में कितनी भी कठिनाइयां हो उसको झेल लेता है, लेकिन सत्य को छोड़ता नहीं। क्योंकि इस पौड़ी में यही उपदेश है, आद सच जुगाद सच है भे सच, नानक होसी भे सच। सच्चे मार्ग चल दिया उस्तत करे जहान, और जहान उस्तत करे या ना करे भक्त परवाह नहीं करता है, वो तो प्रभु की आज्ञा मानो मात, टोटल एक्सेप्टेंस, प्रभु के हुक्म को वो पालन करता है। प्रभु के सेवक को न पहुँचे, वो कितनी ऊंचाई पर जा सकता है वहाँ तक कोई भी नहीं पहुँच सकता। यहाँ तक कि भक्त भक्ति करते करते भगवान हो जाता है। ज्यों जल मह जल आए खटाना त्यों ज्योति संग ज्योत समा। जो प्रभु अपनी सेवा लाया नानक सो सेवक दहदिश प्रगटाया। जो प्रभु अपनी सेवा लाया, परमात्मा उसी को सेवा का मौका देते हैं जिसको अति प्रेम करते हैं। और यदि सिख उस सेवा को प्रभु की हुक्म मान करके करता है, वो जो है सारे दसों दिशाओं में उसका जस फैल जाता है। नीकी कीरी महकल राख है भस्म करे लश्कर कोट लाख है। नीकी कीरी महकल राख है, इस कलयुग में परमात्मा एक निकी जिही कीड़ी को भी जो है रखता है। ऐसा नहीं, यहाँ पर भाव कहने का ये है कि जो गरीबी बेस में रहता है हमेशा, जिसके अंदर अहंकार नहीं है, नम्रता धारण करके रहता है कीड़ी जैसा, गुरु महाराज कहते हैं उसको परमात्मा 24 घंटा रखता है। नीकी कीरी महकल राखे भस्म करे लश्कर कोट लाखे, जिसका सास न काढ़त आप ताको राखत देकर हाथ। साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज कह रहे हैं कि जिसका सास न काढ़त आप ताको राखत देकर हाथ। परमात्मा जिसको चाहता है ना, और जब चाहता है तभी उसकी श्वास को जो है अंदर जाने नहीं देता, हुक्म करता है जो श्वास बाहर गई है अब बाहर ही रहो, क्योंकि हुक्म है अंदर सबको बाहर हुक्म ना कोई, सब कुछ उसके हुक्म से चल रहा है। जिसका सास न काढ़त आप, जिसको परमात्मा आप नहीं मारता है, ताको राखत देकर हाथ, वो परमात्मा को जो है आप हाथ देकर। एक कहावत भी है ना कि जाको राखे साइया, आगे तो आप लोगों को याद ही है। तो एक बार जो है उसका हो जाना है, साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज का हो जाना है, समझे ना। एक बार उसका हो जाएंगे तो आपको वो अपने हृदय में दर्शन देंगे। ये सुखमनी साहब की जो कथा सुनना है, इस भाव से सुनना है कि सच्चे पातशाह इस कथा के समाप्त होने से पहले पहले एक बार दर्शन दे दो मुझे, और मैं ये भी वचन किया था कि जो व्यक्ति ये सत्संग में कम से कम दो चार लोगों को लाएगा, इस कथा को सुनवाएगा, उसके लिए वाहेगुरु के आगे विशेष अरदास करेंगे। सच्चे पातशाह, वो आपके चरणों में जुड़ा है, आप उसको दर्शन दे दें। और असंभव नाम की कोई चीज़ नहीं है। यदि आप प्रार्थना करेंगे वाहेगुरु के आगे, तो जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे। आप दर्शन मांगेंगे दर्शन देंगे, वो धन मांगोगे धन देंगे। लेकिन यही ये सोचना है कि हमने क्या मांगना है। मांगते वक्त बड़ी जो है सावधानी की आवश्यकता है। मानस जतन करत बहुभांत, तिसके कर्तव्य वृथे जात। व्यक्ति इस संसार में तरह तरह की चतुराई करता है, चतुराई कदम कदम पर चतुराई, और बहुत जतन करता है कि मैं ये कर लूं वो कर लूं, जगत में नाम हो जाए। मानस जतन करत बहुभांत, बहुभांत बहुत तरीके से चलाकी अपनाता है अपना। लेकिन गुरु महाराज कहते हैं तिसके कर्तव्य वृथे जात, उसका सारी जो चलाकी है सारा प्रयत्न जो है वो बेकार जाता है। सच्चाई तो ये है कि एक ही जतन करना है कि हे सच्चे पातशाह, इस शरीर की रक्षा करने के लिए दो रोटी दो कपड़ा एक मकान छोटा सा दे दो, बस उसके बाद अपने चरणों में रखो, और कुछ नहीं चाहिए, और नहीं चाहिए। क्योंकि वासनाएं अनंत हैं और वो पूरा नहीं हो सकता है। एक मकान मिल गया, सामने वाला मकान जैसा है वैसा चाहिए, वैसा मिल गया तो शहर में सबसे अच्छा वैसा चाहिए, फिर टोरंटो में सबसे अच्छा चाहिए, फिर कनाडा में सबसे अच्छा चाहिए, फिर विश्व में सबसे अच्छा चाहिए। अब वासनाएं अनंत हैं, पूर्ति के साधन सीमित हैं। सीमित साधनों से अनंत वासनाओं की पूर्ति नहीं हो सकता। एक बात हो सकता है, तुम्हारी आवश्यकता पूरा हो सकता है, उस आवश्यकता की पूरा होने के बाद तुम अपना सब कुछ प्रभु के चरणों में लगा दो। सिर्फ एक नाम प्रभु का जाना है और कुछ नहीं जाना, ज्ञान भक्ति। इसलिए ध्यान के क्लास में मैं बार बार एक ही बात को जोर देता हूं कि जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे, जो खोजे सो पावे। जो खोज नहीं करेगा वो नहीं पाएगा। ध्यान के क्लास में सातों दिन इसी बात पर जोर होता है कि तुम खोज करो, खोज करोगे तो मिलेगा, बिना खोज किए नहीं मिलेगा। उस खोज करने में रास्ते में जितनी मर्जी कठिनाई हो, ये प्रण कर लो कि हम प्राण ही क्यों ना मेरा चला जाए, लेकिन खोज के रहेंगे वाहेगुरु। और जब उसके आगे रो जाओगे बेनती करोगे, साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज दर्शन देंगे। और उस दर्शन से क्या होगा, जन्म जन्मांतरों के जो तुम्हारे पाप है वो नष्ट हो जाएंगे। क्योंकि साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज प्रत्यक्ष हर हैं, वाहेगुरु हैं, कोई भेद नहीं है, गुरु परमेश्वर एको जान। बहु जतन करता बलवंतकारी, सेवंत सूरा चतुर दिशा। आदमी बहुत कोशिश करता है ये भी प्राप्त कर लें, ये भी प्राप्त कर लें, ये भी प्राप्त कर लें। बिखम थान बसंत ऊंचे, नह सिमरन मरणंग कदांच। बहुत ऊंचे स्थान में जाके रहता है, कोठियां बना करके पुलिस रखता है चारों तरफ कि मेरी मौत नहीं होगी। लेकिन परीक्षित ने देखो, परीक्षित ने सांप से बचने के लिए गंगा के प्रवाह में उसने बीच में घर बनाया कि पानी में सांप कैसे आएगा, चलते प्रवाह में उसने बीच में घर बनाया और हुक्म कर दिया कि कोई भी कीड़े मकोड़े कोई भी व्यक्ति मेरे पास ना आवे। लेकिन ये हो नहीं सकता। अंत में जो है कुछ साधु लोग आए, कहते हैं जी हम राजा परीक्षित का दर्शन करना चाहते हैं। सारे दरबारियों ने कहते हैं जी दर्शन नहीं कर सकते, उनका हुक्म है कि कोई भी नहीं अंदर आ सकता। तो हम लोग साधु हैं, हम आशीर्वाद देने आए हैं, आशीर्वाद दे के चला देना, और क्या साधु का भला चाहते हैं। कहते हैं उन्होंने किसी को नहीं बोले आने के लिए। कहते हैं चलो ठीक है, हमको नहीं जाने के लिए कहते हैं, तो ये जो मेरा प्रसाद है ना, मैं इसको मंत्र पढ़ देता हूँ, राजा का कल्याण हो। मुझे पता चला राजा को संकट है, ये प्रसाद ही राजा को दे देना। कहते हैं ठीक है जी, इतना तो मैं मान लूँगा, क्योंकि साधु हो। साधु ने जी एक फल दिया और राजा के पास ले गया। राजन साधु लोग बहुत आए थे, मैं सोचा उसमें पता नहीं, आजकल पता नहीं चलता चोर डाकू का है, साधु के वेश में भी चोर होते हैं, तो इसलिए मैं किसी को आने नहीं दिया। राजा कहते चंगा क्यों, लेकिन उस संतों ने कहा कि ये प्रसाद कम से कम राजा को दे दो, क्योंकि उसके ऊपर संकट है। कहते ये प्रसाद आप रख लो। कहते हाँ ये ठीक है, प्रसाद मैं रख लूँ। जैसे ही प्रसाद लिया, उसको जी खाने के लिए अभी सोच ही रहा था, उसमें से एक छोटा सा कीड़ा निकला। वो कीड़ा देखते देखते जो है बड़ा सांप बन गया, तक्षक था, और उसने हंसता हुआ कहता है राजन हो ही जही राम रुचि राखा। गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में कहते हैं वही होता है जो प्रभु को रुचि हो, वही होता। उसने जो उसको काट लिया, लेकिन उसको ब्रह्म ज्ञान हो गया था भागवत सुनने के कारण। वो राजा कहता है कि तक्षक इस शरीर से जो जानना था जो जान लिया, जो पाना था पान लिया, अब इस शरीर को 100 तक्षक आग के काटे उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे संतों से ज्ञान हो गया है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं इंद्रियां नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं इन सारे से अलग साक्षी चेतन आत्मा हूँ। पूरे 7 दिन के शिविर में यही बताया जाता है, जो लोग यहां पर होंगे उसको पता हो। इसलिए एक बार 7 दिन का वो शिविर कर लो, 7 दिन में आपको जीवन में एक नई रोशनी, एक नया विवेक पैदा हो। बहुत जतन करता बलवंत कारी सेवंत सूरा चतुर्दिश विखम थान बसंत ऊचह नह सिमरन मरणं कदांच होवंत आज्ञा भगवान पुरख है नानक कीटी सास अकर खते। ये साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी की वाणी है, ये नहीं सोचना ना संस्कृत है। साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ने श्लोक सहस्कृति में हिंदी और संस्कृत मिक्स करके एक प्राकृत भाषा में वाणी उच्चारण किए। नह शीतलंग चंद्रदेव है, नह शीतलंग बावन चंदन है, नह शीतलंग शीत रुतेण नानक शीतलंग साध स्वजन है। ये साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज की वाणी है। आगे गुरु महाराज कह रहे हैं मारे ना राखे अवर ना कोई सर्व जिया का राखा सोए। जिसको परमात्मा राखा है ना, उसको इस दुनिया में कोई मार नहीं सकता, कोई नहीं मार सकता, कोई पैदा नहीं हुआ जिसको परमात्मा आप राखा है। मारे ना राखे अवर ना कोई सर्व जिया का राखा सोए काहे सोच करह रे प्राणी जप नानक प्रभु अलख विडानी। साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज बोल रहे हैं कि तू क्या सोच रहा है, मैं देखता हूं अपनी माँ को बहू आने पर लड़का कहता है माता जी अब चलो बहुत हो गया और जगह, क्योंकि हमने कान में हमें मंत्र मिल गया है। पत्नी जो है कान में मंत्र फूंक देती है कि अब जो है हम अकेले रहेंगे, ये तो सारा दिन जो है बोलती रहती है। जिस माँ ने 24 साल तक 25 साल तक पाली है इतनी मशक्कत से, और ये देखो कि जिस वक्त 1 महीना का बच्चा पेशाब कर देता है टट्टी कर देता है जी, माँ जो है अपने कपड़े को आगे कर, आप गिले में सोती है और बच्चे को सूखे कपड़े में, माँ का दिल कौन दे सकता है। इसीलिए तमेव माता, सबसे पहले गुरु जो है माँ है, और जो व्यक्ति माँ की सेवा नहीं कर सकता, जो व्यक्ति माँ की आज्ञा का पालन नहीं कर सकता, जो माँ का नहीं होगा वो ईश्वर का कभी नहीं हो सकता। सीधी सी बात। इसलिए माँ के चरणों में जन्नत होता है। सबको भुला दो, माँ को नहीं भुला। गुरु महाराज कहते हैं, काहे सोच करह रे प्राणी, जप नानक प्रभु अलख विडानी। जो परमात्मा अलख है, जो मन से बुद्धि से लखा नहीं जाता, जाना नहीं जाता, और आश्चर्य स्वरूप है, विडानी मने आश्चर्य, ऐसा जो वाहेगुरु है वो तुम पर हमेशा रक्षा करते हैं। काहे सोच करह रे प्राणी, हे प्राणी, हे जीव, तू क्या सोच रहा है? तुम संतों के चरणों में आओ, कथा सुनो, उसका मनन करो, अपने जीवन में घटाओ। जो व्यक्ति संतों के साथ अपना मन लगा लेता है ना, चार पदार्थ जेको मांगे साध जना की सेवा में, किसी संत महापुरुष का हो जाओ तुम। एक बार, काहे सोच करह रे प्राणी, जप नानक प्रभु अलख विडानी। साधु की महिमा साहेब गुरु नानक देव जी महाराज उपदेश करते करते भर्तृहरि हरि के को उपदेश किए, उसके बाद आगे उपदेश करते करते आगे गए तो एक सिख घर के घर में, जो हमेशा सुमरण करना, वाहेगुरु का चिंतन करना, सत्संग सुनना, साधुओं की सेवा करना, एक सिख के घर में गए। उसने जी बहुत प्रेम से भोजन कराया, और जो भी संत उनके पास आता था ना, वो एक ही बात पूछता था कि संतों की सेवा का क्या लाभ। तो कोई संत कुछ बता देता था, कोई कुछ बता देता। आज साहेब गुरु नानक देव जी महाराज सिख के घर में गए, कहते हैं, सच्चे पातशाह आप बताएं कि संतों की सेवा का, साधुओं की सेवा का क्या लाभ है? उनको भोजन छकाने का है कोई लाभ के ऐसे ही मैं परिश्रम कर रहा हूँ? कहते हैं, इसमें कहने की क्या बात है, तुमको दिखा ही देता हूँ। कहते हैं, तुम ऐसा करो, तुम एकांत जंगल में चले जाओ, जहाँ दरख्त है, दरख्त के नीचे बैठो और एक घंटा वाहेगुरु वाहेगुरु, सतनाम सतनाम, सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री, दरख्त के नीचे एक घंटा जाप करके आ जाया करो। ओ जी गया एक घंटा सतनाम वाहेगुरु करके, वो आ गया। उसके ऊपर जो है एक कौवा और उसकी पत्नी दोनों रहते थे। वो एक घंटा जो उस सिख है वहाँ बैठा और वाहेगुरु का सुमरण किया, जिसके कारण कौवा जो है बगला बन गया। दूसरे दिन साहेब गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, दूसरे दिन फिर जाओ तुम वहाँ पर। दूसरे दिन भी गया, एक घंटा सुमरण करने लगा, पाठ किया, वो जो कौवा वो जो बगुला बना था, दोनों पति पत्नी, एक घंटा सुमरण का प्रताप ये हुआ कि आज दोनों हंस बन गए। फिर वो एक घंटा सुमरण कर क्या, कहते जी सिर्फ रोज लेफ्ट राइट ही कराते हो कि कुछ दिखाओगे भी? कहते ठंड रखो, थोड़ा धैर्य रखो, धैर्य बहुत जरूरी है। वो तीसरे दिन फिर गया जी, वहाँ जा करके वो सुमरण करता है, वाहेगुरु का चिंतन करता है, सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु। वो जो जोड़ा हंस बन गया था ना, वो आज दोनों मनुष्य रूप धारण करके आ करके उस सिख के चरणों में डिग गया। वो सिख पूछने लगा, भाई तुम मेरे चरणों में तुम दोनों क्यों डिगते? कहते हैं, आपने हमें उद्धार किया है, नीच जूनी से उत्तम जूनी हमें दिया है, हमारे लिए तो आप सब कुछ हो। कहते हैं, क्यों, क्या बात हुई? कहते हैं, आपने पहले दिन यहाँ पर आए और सतना वाहेगुरु का सुमरण किया, जिसके प्रताप से जो है हम लोग कौवा थे बगुले बन गए, और दूसरे दिन तीसरे दिन जो है हंस बन गए, और आज आपके सुमरण का ये प्रताप हुआ कि हम जो है मनुष्य का शरीर धारण किए हैं पति पत्नी, और प्रभु चरणों में लगेंगे, क्योंकि आपके सुमरण का प्रताप में देख रहा था सब कुछ, वो उसके कारण। वो जी सिख जो था आके साहेब श्री गुरु नानक देव जी महाराज के चरणों में गिरा। उन दोनों को भी कहा, ये मेरा प्रताप नहीं है, हमारे घर में एक जो है साक्षात परमात्मा प्रकट हुए आए हैं, साधु आए हैं, जिसके कारण ये सब कुछ करामात हुआ, चल तुमको भी लड़ लाता। वो दोनों को, पति पत्नी को लेके वो सिख गया और जा करके साहेब गुरु नानक देव जी महाराज का दर्शन कराया, नानक नदरी नदर निहाल। वो दोनों जो है जी साहेब गुरु नानक देव जी का दर्शन करके वो निहाल हो गया, ब्रह्म ज्ञान को पा गया, तीनों लोग मुक्त हो। ये संतों की जो महिमा है इतनी है कि साधुनाम दर्शनम पुण्यम, उनके दर्शन से भी लाभ होता है। साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज उपदेश कर रहे हैं, बारंबार बार प्रभ जपिए पी अमृत यह मंथन ध्रपिए, बार बार जो है तो प्रभु का नाम सुमरण करो, जाप करो, पी अमृत, एक ही अमृत है और वो है वाहेगुरु का नाम, और कोई अमृत नहीं है, उसको पी करके मन तन को जो है त्रिपत कर लो। नाम रतन जिन गुरुमुख पाया, जो गुरुमुख वाहेगुरु के नाम रूपी रतन को पाया है, तिस किछ अवर नाही दृष्ट आया, उसको जो है चारों तरफ परमात्मा का ही वाहेगुरु का ही दर्शन होता है। नाम धन नामो रूप रंग, नाम ही परम धन है और नाम के रंग में ही रंगना जीवन का लक्ष्य है। नामो सुख ना हर नाम का संग, नाम से ही तुम्हें सुख मिलना है, नाम के रंग में रंगने से ही तुम्हारा जीवन जो है सफलता को प्राप्त होगा। नाम रस जो जन तृप्ताने, नाम रस जो जन तृप्ताने, जो व्यक्ति प्रभु वाहेगुरु के नाम को सुमरण करके तृप्त हो गया है। नाम रस जो जन तृप्ताने, दो तरह के रस है, एक जगत का रस है उससे आदमी नीचे गिर जाता है, एक वाहेगुरु के नाम का रस है, उस रस को पाने से वाहेगुरु का दर्शन होता है। नाम रस जो जन तृप्ताने, मन तन नामह नाम समाने, वह प्रभु के नाम में समा जाता है, वाहेगुरु में समा जाता है। उठत बैठत सोवत नाम, कहो नानक जन कै सद काम, जो व्यक्ति चलते फिरते सोते बैठते जागते उठते बैठते सतनाम श्री वाहेगुरु, 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 सतनाम श्री वाहेगुरु का जाप करता है, उठत बैठत सोवत ध्याये, मार्ग चलत हरे हर गाइए, उठत बैठत सोवत जागत सदा सदा हर ध्याये। जो व्यक्ति उठते बैठते सोते जागते प्रभु के नाम का सुमरण करता है, साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं, कहो नानक जन के सद काम, वह व्यक्ति सारे उसकी कामनाएं पूरी हो जाती हैं। उठत बैठत सोवत नाम, कहो नानक जन के सद काम, उसकी जो सारी कामनाएं हैं, सब कामनाएं, सब कामनाएं क्या है, अज्ञान सहित सब दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति, इसको कैवल्य मोक्ष कहते हैं, उस व्यक्ति को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति चलते फिरते सोते बैठते जागते संतों की सेवा करता है और महापुरुषों का दर्शन करता है, सुखमणि की कथा को सुनता है, कुछ सुखमणि की कथा को सुन करके अपने जीवन में घटाता है, उसका जो है लोक सुखिए परलोक सुहेले, नानक हर प्रभु आपे मेले। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।